संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान। अजगर सह आत्मनः आत्मनि तुष्टः, आत्मा आत्मा में ही तृप्त हो, संतुष्ट हो। समय सार परमागम में शायद 150वीं गाथा है, जिसमें ये कहा गया है, एदम निरदो नित्यम संतुष्टो होति नित्यमेदमी एदमि होति तृप्तो हो हरि प्रिय उत्तमम सौख्यम। क्या इस गाथा का अर्थ है? एदम निरतो नित्यम, तुम निरंतर इस भगवान आत्मा में लीन हो जाओ, रत रहो, लीन रहो। संतुष्टो हो दि नित्य में दमनी, तुम निरंतर इस भगवान आत्मा में ही संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहो माने अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अभी हमारा तो ये तो ठीक है, लेकिन 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 शुरू होती रहती है ना। आपकी आत्मा की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ धर्म की बात भी बताइए। तो आत्मा की बात धर्म की बात नहीं है क्या? वो कहते हैं इसमें ही लीन हो जाओ और इसमें ही संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट होने का अर्थ ये है कि फिर हमें उसमें बदलाव की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिस पदार्थ में हमारी बदलाव की इच्छा है, इसका मतलब ये है कि हम उसमें संतुष्ट नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया चीज जो आपको खाने में सबसे बढ़िया लगती हो वो बनाए घर में और एक कौर खाते हैं, तो उसके बाद में दोबारा दूसरा कौर उस चीज का नहीं खाते। मीठे का खाएंगे तो फिर दूसरा नमकीन चाहिए, क्यों? नमकीन प्रिय है तो उसके बाद मीठा चाहिए, उसके बाद चटनी चाहिए। ये बदल बदल के खाने की जो बात है, इसका मतलब तुम्हें किसी भी चीज के खाने में संतोष नहीं मिल रहा। यदि होते तो उसका रिपीट करते ना। मिठाई अच्छी होती, मिठाई मिठाई खाते। तुम कहते हो कि हमें ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, सचमुच तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो बदलने की भावना है, ये अच्छा नहीं लगने की प्रतीक है, अच्छा लगने की प्रतीक नहीं है। क्यों? पूरा भोजन कर लिया, अब तो पूरी तृप्ति हो गई ना, अब तो कुछ नहीं चाहिए ना। कहाँ अब कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा बरियाली सौंफ सुपारी। क्यों? क्यों ना, बढ़िया माल मसाला खा लिया है, पान ये घास पत्ती खाने की इच्छा क्यों हो रही है? कि जरा मुंह साफ कर लूं, इसका मतलब यह है खाना खाने से मुंह गंदा हो गया है। क्यों साफ करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यह है कि आपने जो भी खाया है उसमें से किसी में भी आपको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे पांच इंद्रियों के विषयों में लगाना, इस स्पर्शन रसना ग्राम चक्षु और कर्ण, उसमें तृप्ति नहीं होती है। इसे नित्य नया चाहिए, और जहां तृप्ति होती है उसमें नए की मांग खत्म हो जाती है। क्या कालिदास ने लिखा है कि रमणीय किसे कहते हैं, सुंदर किसे कहते हैं? रमणीय का मतलब रमण करने योग्य, कि मैं इसमें ही रमण करूं, उसका नाम है रमणीय पदार्थ। तो उसने लिखा क्षणे क्षणे यन्नविपम उपैति तदीय रूपम रमणीयताया। जो एक एक क्षण में नया नया लगे तो समझ लेना कि ये रमणीय है, यानी उसे बदल कर फिर दूसरी चीज को देखने की इच्छा नहीं हो, उसमें ही नयापन लगे, उसमें ही नयापन लगे। बार बार जिस चीज को देखने की इच्छा हो तो वो चीज समझ लेना रमणीक है क्या, और जिस चीज को देख ली अब दूसरी बात करो इसका मतलब वो रमणीक नहीं है। रमणीक माने रमन करने योग्य। तो तेरा भगवान आत्मा रमणीक है कि नहीं है? क्यों गुजरात में तो बहुत रमणीक भाई मिलेंगे। रमणीक माने रमन करने का एकमात्र स्थान कि जहां से दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं हो, है ना। तो कहते हैं तेरा भगवान आत्मा ही ऐसा रमणीक पदार्थ है कि एक दफे वो जानने में आ गया अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, तो अनंत काल तक वहां से उपयोग को हटाने की इच्छा उनकी नहीं होती। इसका मतलब वो रमणीक है क्या। तो क्या लिखा इसमें, एदम्मी रदो नित्यम। एदम्मी माने इस भगवान आत्मा में निरंतर रद लीन हो जाओ, संतुष्टो हो नित्य में दम्मी, और इसी भगवान आत्मा में तुम संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट माने अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। जिन्हें कछु नहीं चाहिए तेनर साहन साह, क्या जिनके पास सब कुछ है वे हैं साह, साह माने राजा, समझ रहे ना। और जिन्हें कछु नहीं चाहिए तेनर साहन साह, वे राजाओं के राजा है। अपनी भारतीय संस्कृति में राजा किसे कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, है ना। और महाराज किसे कहते हैं, क्या जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, नग्न दिगंबर हो गया हो, एकाध कपड़ा रखा हो, लेकिन छोड़ा तो है ना, दोनों ने चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, क्या रखने की बात तो नहीं है ना है? तो इसलिए कहते हैं कि जिन्हें कछु नहीं चाहिए तेनर साहन सार, इसका नाम संतुष्टि है कि मैं अपने में ही संतुष्ट हूं, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि आपका अकेले में दिन कैसे कट जाता है, क्यों कि हमारा तो भीड़ में हमें मुश्किल पड़ती है क्या, वो जो हम सबसे ज्यादा खोटा मानते हैं जो सबसे ज्यादा भीड़ में घिरे रहे, क्यों जहां एकांत मिले अपना भगवान आत्मा अपने पास है ना, अपनी दिनवाणी माता अपने पास है ना, हमें किसकी शरण में जाने की जरूरत है। अपन बोलते हैं ना केवली पंडतम धम्मो शरणम पर विद्यान, केवली के द्वारा कह गए मैं तो धर्म की शरण में जाता हूं। जहां उसको तृप्ति ना हो, माने अब मैं ये हो गया, संतुष्टि न हो, समझे ना, कि अब बस मुझे और नहीं चाहिए, वो ही उसमें संतुष्टि ना हो और अन्य को जानने की इच्छा नहीं हो। भक्तांबर महाकाव्य है ना, भगवान आदिनाथ की स्तुति, तो उसमें भगवान से भिन्न करते हुए मानतुंगाचार्य कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। आपने पढ़ा कभी उसे, उसका अर्थ कभी विचार किया, नहीं सुना होगा,
सुना है लगा अर्थ,
अर्थ नहीं मालूम, सुनो क्या लगा, मैं तो तुमसे ज्यादा और जो देवी देवता है ना, शंकर विष्णु आदि जो अन्य धर्मों के, उनके दर्शन करने को अच्छा मानता हूं। चंद बोलू, मन्ने बरम हरिहरा दे दृष्टवा, मन्ने बरम माने अच्छा मानता हूं, किसको, हरिहर, हरि माने श्री कृष्ण भगवान और हर माने महादेव, इनको देखना मैं अच्छा मानता हूं और तुम्हारा देखना के दर्शन करना मैं अच्छा नहीं मानता हूं। भक्तांबर में ऐसा लिखा, हम कल से नहीं पढ़ेंगे, क्यों हमें तो पता ही नहीं कि क्या लिखा है। एक जगह तो मेरे से 48 काव्य का अर्थ तो सुनो है, तो मालूम पड़ेगा कितने अंधेरे में हो।
एक प्रोग्राम रखना
चाहिए, मन्ने वरम हरिहरादेव दृष्ट्वा, हे भगवान मैं हरिहरादिक को देखना भी अच्छा मानता हूं, क्योंकि उन्हें देखने के बाद फिर द्वारा देखने का मन नहीं होता, और तुम्हें देखने के बाद निरंतर देखते रहने का मन होता है और दूसरों को देखने का मन नहीं होता। तो जब दूसरों को देखने का मन नहीं हो, ऐसे आदमी को देखने से क्या फायदा है? देंगे क्या? मन्ने वरम हरिहराद दृष्ट्वा दृष्टेषु एषु हृदयम् त्वयितो समेति। उनको देख लेने के बाद मन में संतुष्टि नहीं होती है, और जब तुम्हें देखता हूं तो संतोष हो जाता है, तो फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं रहती है। तो जब किसी को देखने जानने की इच्छा नहीं रहे, ऐसा देखने जानने से क्या फायदा? मजाक किया उनने, माने उनमें मेरा मन नहीं लगता है, तुम्हें मेरा मन लग गया है। तो और अलग जानने की इच्छा नहीं रहे और अधिक भोगने की इच्छा नहीं रहे, उसका नाम है संतुष्टि। एदम निरदो नित्यम संतुष्टो हो नित्यमेदमी एदमी हो तृप्तो, और इसी में तुम तृप्त हो जाओ। ये जो आगे सब्जेक्ट है अभी उसमें लिखा हुआ है कि आत्मना आत्मनि तृप्ता, ये इसी का है, ये तीसरी पंक्ति के भगवान आत्मा आत्मा में ही तृप्त है ना। अब तृप्ति का लक्षण क्या है? कि हमें अब कुछ और नहीं चाहिए, बस खत्म, उसका नाम तृप्ति है। तो तेरे को इस भगवान आत्मा में ही तृप्ति होनी चाहिए। हो जित है उत्तमम सुखम, यदि तूने ऐसा किया तो तुझे उत्तम सुख अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, और अनंत काल तक तो अतीन्द्रिय आनंद भूखता रहेगा। देखो भाई, जब तक एक जगह रहने की में संतुष्टि तेरे को ना लगे, एक चीज को देखने में संतुष्टि ना लगे, तब तक मोक्ष में मत चले जाना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगा। क्या मोक्ष में तो जाना है ना सबको? यहां साहब जाना है ना, आपका व्याख्यान सुनने काय को आते, इसलिए आते हैं ना। तो सोच लो पहले मोक्ष में क्या है। हाँ हाँ, ये कह रहा एक ही चीज है, खत्म। देखो क्या है, ना तो खाने खाने पीने की कोई सुविधा है, ना चाय पानी की व्यवस्था है, ना घूमने फिरने की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि लौट के आने की व्यवस्था नहीं है। बस ये दुख है। ये खाने पीने का शौकीन घुमक्कर प्रकृति के जो आदमी हैं, उनको ऐसी जगह क्यों पसंद आने लगी कि न घूमने फिरने की सुविधा है और न खाने पीने की। और सबसे बड़ी दिक्कत है, हम तो सुंदर शिखर भी जाते हैं तो वापसी का टिकट लेके जाते हैं ना, और अमेरिका वाले तो टिकट ही नहीं देते हैं, एक तरफ का वापसी का ही देते हैं। क्यों? एक तरफ का टिकट 40,000 का और दोनों तरफ का 45,000 का। क्यों? तुम ले लो, नहीं आना हो तो भी। तो इसलिए कहते हैं कि जिस मोक्ष में से द्वारा वापस आने की सुविधा नहीं है, ऐसा आदमी जो समय चक्रवी वापसी का टिकट लेके जाता है, उस मोक्ष में जाना क्यों पसंद करेगा? फिर तो फंसे से फंसे एक दफे। क्यों? तो आचार्य कहते हैं कि यदि तू आत्मा में तृप्त हुए बिना मोक्ष में चला गया तो बहुत संकट में पड़ जाएगा। इसलिए पहले तू यही चीज को समझ ले, यहां अच्छी तरह जान ले कि अनंत काल तक तेरे को आत्मा में ही रहना पड़े और बाहर आना नहीं पड़े, और कहीं हिलने डुलने की बात नहीं हो, खाने पीने को नहीं मिले, कोई तेरी प्रशंसा करे निंदा करे उसे कोई तेरे को फर्क नहीं पड़े, तो मोक्ष में जाना। मोक्ष वहां थोड़ी है, वो तो वो जगह है जहां यहां से जीव मोक्ष हो जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, वो भी मोक्ष वाले के लिए रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? वहां भी अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, आपको मालूम, सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान के जो सभी का आकार है ना, उसके भीतर आनंद निमोदिया जी भी रहते हैं। कहाँ रिजर्वेशन है आपका? बंबई में है ना फ्लैट है? कितना कितने बेडरूम है? चार बेडरूम का, इतना बड़ा फ्लैट आपका अकेले का पूरा फुल माल की धोखे में हो देसी भाई, उसमें मक्खी मच्छर कितने होते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब रहते कि नहीं? वो उनका घर है कि नहीं? आप अपना मान के बैठ गए। सिद्धेश्वरा सिद्धों का घर नहीं है और निगोदिया भी वहां रहते हैं, तो आपके घर में जो और कीटाणु वगैरह रहते हैं वो उनका भी घर है कि नहीं? क्यों? मैं ये चर्चा कर रहा था तो एक आदमी का मेरा एक प्रश्न है। हाँ मोदी, क्या प्रश्न है भैया तेरा? कि एक बताइए कि बंबई से लेकर दादर तक मच्छर नहीं है और दादर के बाद मच्छर है, ऐसा क्यों है? मैंने कहा तो कोई आत्मा जी बात पूछेगा। मैंने क्या उत्तर दिया मालूम आपको? कि भाई मुंबई से दादर तक बहुत महंगे मकान हो गए, मच्छर इतने महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे तुमको करोड़ों रुपया देने पर जो मिला है उन्हें वो मुफ्त में मिला है। जो अनंत भगवान को अनंत पुरुषार्थ करने के बाद जो मोक्ष जगह मिली है वो निगोदिया को बिना कुछ किए मिली है। मेरे कहने का मतलब, यहां से मुक्त हुए बिना वहां चले गए तो भी सुखी होने वाले नहीं हैं। सुखी होने की जगह, मुक्त होने की जगह तो ये मध्यलोक है। जितने जीव मोक्ष में जाते हैं ये मध्यलोक से जाते हैं, मनुष्य पर्याय से ही जाते हैं। नरक से कोई मोक्ष नहीं जाता, स्वर्ग से भी कोई मोक्ष नहीं जाता। कभी तुम तीन लोग का नक्शा देखोगे ना तो जो सर्वार्थ सिद्धि है और उसके ऊपर सिद्ध शिला है उन दोनों में आड़े बाल के बराबर भी अंतर नहीं है। अगर इसके ऊपर सिद्ध शिला है नीचे सर्वार्थ सिद्धि, तो अपने बाल को आड़ा बाल ऐसा निकालना चाहो तो नहीं निकल सकता। तो कितना सर्वार्थ सिद्धि से कितने नजदीक है मोक्ष, है ना? इतना नजदीक है ना, लेकिन बहुत दूर है, क्योंकि वहां से रास्ता नहीं है, गेट नहीं है। लौट के यहां मनुष्य गति में आओ सात राजू, फिर यहां से जाओ मोक्ष को, ख्याल में है ना? तो 14 राजू दूर है, आरे बाल के बराबर भी अंतर नहीं है, फिर भी क्षेत्र के हिसाब से 14 राजू दूर है। वहीं के वहीं जुड़ी जा सकते हैं। यहां से भावनगर कराची मुंबई से 30 किलोमीटर होगी, भावनगर भी 30-35 किलोमीटर होगा प्लेन से जाओ, और फिर यहां से 24 घंटे में चक्कर काट के जाते कि नहीं जाते हो तुम? रास्ता ही नहीं है हमारे ट्रेन का, उसका जमीन से तो क्या करोगे? तो मोक्ष से यहां होता है। तो क्या है कि अपने भगवान आत्मा में तुम तृप्त हो गए, समझ लो तुम्हें आधा मोक्ष हो गया। क्या ए देन हो दितो, तुम इसी भगवान आत्मा में तृप्त हो जाओ, और तृप्ति का लक्षण एक ही है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम है तृप्ति। क्यों भाई साहब, आप लोग ऐसे आराम से बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते हैं? घबराना नहीं, कुर्सी कुर्सियां हैं वो बहुत खाली पड़ी हैं। कहीं साहब जरा इधर रहता है, वो आदत ऐसी खराब हो गई ना, अब ऑफिस में भी कोई नहीं बैठते हैं, दुकान में भी कुर्सी पर ही बैठते हैं, नीचे बैठते ही नहीं है, अब तो कुर्सी किसी से छोड़ी नहीं जाती। सब लोग कुर्सी से चैट में जाते हैं, तो कुर्सी पर तो तुमको बड़ा आराम रहता है ना पूरा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना नवलचंद भाई? तो फिर ऐसा बदला बदली काय को करते रहते हैं? एक भी आसन में तृप्ति कहाँ है? 5-5 मिनट में बदलते हो कि नहीं बदलते हो? अब ये हाथ ऐसे रखे थोड़ी देर, और ये हाथ ऐसे रखे, क्या क्या है जी? क्यों ना बदलना, क्यों है ऐसा कि जरा थोड़ा यहाँ तकलीफ रहती है? एक भी आसन में हमको तृप्ति नहीं मिलती है, तो बदलना पड़ता है। हम एक जगह भी संतुष्ट नहीं है, हमें बदलना पड़ता है। तो इसलिए हम एक जगह लीन नहीं है, इसलिए हमें उत्तम शक्ति प्राप्ति नहीं हो रही, उत्तम सुख की प्राप्ति तो यहां होती है, यहां माने भगवान आत्मा में। और वो जब प्रकट होगा सबसे, तो तुम इस मध्य लोक में होगे, और जब मोक्ष जाओगे तो आज कर्मों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है, राग द्वेष से मुक्त होने का नाम मोक्ष है, तो यही मुक्त होगे। वहां तो यहां से मुक्त होकर वहां जाते हैं, समझ में नहीं है? देखो यहां मरघट तो होंगे ना, क्या बोलते हैं मरघट, किसे बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं? तो आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखे गए उनके, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, क्या नया बनाते रखते कि नहीं रखते? लेकिन वो तो मरघट है ना, क्यों सचमुच वो मरघट है? वहां मरघट है, हम वहां नहीं जाते, वहां हमें डर लगता है, मरघट है। अरे मरघट नहीं है, वो तो जलघट है, वहां तो जलाया गया है, वहां तो गाड़ा गया है, मरा तो घर में है। यदि मरघट से तेरे को डर लगता है तो घर छोड़। हर आदमी घर में मरता है कि हॉस्पिटल में मरता है? असली मरघट कहाँ है? घर में है ना, जल्दी निकालो। मर तो यहां से गया ना, तो मर के गया, जा भी गया हूं, मोक्ष में गया हूं कहीं दूसरी जगह गया हूं, लेकिन मरा तो यहां ना। ऐसे मोक्ष भी यहां होता है, देह से मुक्त हुआ, कर्म से मुक्त हुआ, राग से मुक्त हुआ, ये सारा काम मध्यलोक में होता है, मनुष्य गति में होता है। तो यहां से तो वो जाते हैं, तो ऐसे ही जिसे आप मरघट कहते हो, वहां तो हम यहां घर से वहां ले जाते हैं, मरते नहीं है वहां, मर जाने के बाद ले जाते हैं। किसे? अपन को, अपन को ले जाते हैं। अपन तो चले गए, तुम कौन हो? तो चले गए वो तुम हो, कि जिसे मरघट में ले जाते हैं वो तुम। हम बहुत ऐसे गीत गाते हैं, कहते बड़ा वैराग्य का भजन है, क्या औरत देहरी तक साथ देगी और बच्चे मसान तक ले जाएंगे, सब मिलकर तुझे जला देंगे, तू धू धू कर जल जाएगा, पंखी उड़ जाएगा, हंसा उड़ जाएगा और तू यहीं पड़ा रह जाएगा। जब ऐसा भजन बोलते हैं तो सब आंख में आंसू आ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, अच्छा लगता है? तो मैं कहता हूं ये भजन अच्छा है, तो बुरे भजन कौन से होते हैं सर? ये तो सबसे बुरा भजन है। क्या बुराई है इसमें? कि इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि हंसा उड़ जाएगा और पक्षी उड़ जाएगा और तू पड़ा रह जाएगा। तो तू तो मुर्दा है जो पड़ा रह जाएगा, कि जो उड़ जाएगा वो है तू, नक्की कर। तो इसमें तो शरीर में आत्मा बुद्धि हो रही ना, मैं अपने शरीर में हूं ऐसा माना जा रहा है ना, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? तो कहते नहीं नहीं साहब ये बात नहीं है। कैसे नहीं है? जरा आगे क्या? औरत देहरी तक साथ देगी, किसका? तेरा के शरीर का, बोल मुर्दे का। बच्चे मसान तक ले जाएंगे, किसे? तुझे को, मुर्दे को। और सब तू धू धू कर जल जाएगा, तू जल जाएगा कि मुर्दा? तू तो चला गया, जो चला गया वो तू है कि जो यहां जल रहा है वो तू है? तेरी एकत्र बुद्धि किसमें है, शरीर में है कि आत्मा में? समझे? तो इसलिए कहते मोक्ष तो यहां होता है, वो तो मुक्त होने के बाद जीव मोक्ष में जाता है, वो तो वो जगह है कि मुक्त होने के बाद जहां जाते हैं, तो मुक्ति का नाम है। तो आत्मा में तृप्ति का नाम मुक्ति है, आत्मा में संतुष्टि का नाम मुक्ति है, आत्मा में लीनता का नाम मुक्ति है, आत्मा में अपनापन का नाम मुक्ति है, जो कुछ भी है वो आत्मा में है। तुलसीदास जी का एक बहुत बढ़िया पद है जो मुझे सबसे बुरा लगता था पहले, जब मैं एमए वगैरह में पढ़ता था ना, तब वो पढ़ता था, तो उसमें क्या लिखा था? जाको प्रिय न राम वैदेही, तो तजिए करोर बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। क्या? कि जिसे राम और सीता प्यारे नहीं हैं, اس کو چھوڑ دو, کروڑ بیریوں کے سمان جیسے کل شترو ہے نا ایسا, چاہے وہ ہم سے کتنا ہی پریم کرتا ہو لیکن رام سے پریم نہیں کرتا ہے تو اسے تم چھوڑ دینا چاہیے. تو میں نے کہا کتنا سامپردائک ہے یہ آدمی کون تلسی داس کہ رام اور سیتا کو جو نہیں مانے اس کا کروڑ شترو ہو گئے, اسے چھوڑ دینا چاہیے کیا؟ جا کو پریا نام بے دے ہی سو تجے کروڑ بیری سم یدپی پرم سنے ہی. کہ کوئی ادھارن ہے ایسا کہ کوئی بات نہیں کرتے ہو پتا تجو پرہلاد, پرہلاد نے باپ کو چھوڑ دیا نا کیونکہ رام کا ورودھی تھا, بھیشن بندھو بھیشن نے بھائی کو چھوڑ دیا رامن کو کیونکہ وہ رام کا ورودھی تھا, بھرت مہتاری اور بھرت نے اپنی ماں سے کئی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ رام کی ورودھی تھی. تو ایسے لوگ ہوئے ہیں پہلے کہ رام کے ورودھی تھے, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو خیال نہ نا چاہے بھائی ہو ان نے چھوڑ دیا تھا. کیا تا تجو پرہلاد بھیشن بندھو بھرت مہتاری, تو جو رام کا ورودھی ہے جو رام کو پسند نہیں کرتا ہے بس وہ میرے کو پسند نہیں ہے, میرا وہ ہزار شترو ہیں کروڑ شترو ہیں, تو مجھے بہت برا لگتا تھا. لیکن بعد میں میرے کو لگا کہ بات تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا سنشودھن کر دو. کتنا جا کو پریہ نہیں آتم راما سو تجیے کروڑ بیری سم یدپی پرم سنیہی, جس کو اپنا بھگوان آتما پیارا نہیں ہے ایسے اجانی مرچا دشٹی کو شترو کے سمان کر کے اس کی سنگتی چھوڑ دینی چاہیے. سمجھ گیا نا, اتنی سی بات ہے, یہ کسی کے پرتی دیش کی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارے اپنے آتما کے پرتی پریم کی بات ہے. وہ جو تلسی راج جی کہہ رہے ہیں وہ کسی سے مجھے دیش کرنا ہے یہ نہیں کہہ رہے, وہ رام کے پرتی ان کی کتنی اگاد شردھا ہے وہ تو یہ ویکت کر رہے ہیں. پھر انت سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے, رام کے پرتی جو ان کی بھکتی ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں. ایسے ہماری جو آتما کے پرتی پریم ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں جسے آتما پیارا نہیں ہے وہ ہمارا کوئی نہیں ہے, رشتے دار ہو تو بھی, اور جسے آتما پیارا ہے وہ کتنا ہی دور کا ہو تو بھی میرا ہے, سادھرمی پریم بولتے نا آپ. تو یہی کہہ رہے یہ دین ہو دی چتو کہ تم اپنے آتما میں ترپت ہو جاؤ, اتم سکھ ہونے کا یہی اپائے ہے. تو یہ کہتے ہیں جو ہماری وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری آتما کے پرتی جو ہمارا آگاد اسنیہ ہے, آتما کے پرتی جو ہمارا اپنا پن ہے اس کی یہاں بات ہے, اور وہی ہمارے یہاں دھرم ہے. سما دسم کیا ہے؟ اپنے میں اپنا پن. سمیک جان کیا ہے؟ اپنے کو نجروپ جاننا. سمیک چاہتر کیا ہے؟ اپنے میں لیل رہنا. آتا نا پردے بھن آپ میں رچی سمیا تے بھلا ہے آپ روپ کو جانے پنو سو سمیا جان کلا ہے آپ روپ میں لین بھائی تھر سمیا وچارے ترسوئی. بس تین پنکتیوں میں آ گیا پورا موکش مارگ. پر پدارتھوں سے بھن اپنی آتما میں رچی اس کا نام کیا ہے؟ سمیا درشن. پر دردنتے بھن آپ میں رچی وہ سمگت ہے, اور وہ کیسا ہے؟ بھلا ہے, اچھا ہے. اب اس کو متھا درشن کیا ہے تو پرٹ دو اسے. بولو کیسے پڑھ دیں گے؟ میرا جی آتم درد دیتے بھن واسطو میں رچی سامیا برا ہے بھلا ہے نہیں. پھر بندہ سمجھ سکے کہتے ہیں دیکھو پردربن تے بھن آپ میں رچی سمیا تے بھلا ہے. بدلو نا تو آتم واسطو تے بھن واسطو میں رچی میں چا تے برا ہے. اتنی سی تو بات ہے. अपने आत्मा को छोड़कर सब पदार्थों में रुचि, उसका नाम मिथ्यात्तर, वो बुरी चीज है। प्रकृतियों से भिन्न अपने आत्मा में रुचि, उसका नाम सम्मय दर्शन है और वो भला है। सम्यक ज्ञान क्या है? कि आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने भगवान आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान की कला है, बाकी वो चतुराई है। बाकी जो अपना ज्ञान है, सारी दुनिया को जाना और जानने वाले को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, और जाया नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। पर दिव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जानना ही तेरी कला है, वही ज्ञान कलात्मक है, बाकी का ज्ञान कला नहीं है। और आप रूप में लीने भाई थेरे सम्यक चारित्र सोई, और आत्मा में लीन होना वो सम्यक चारित्र है, बस खत्म। इतना सा मोक्ष मार्ग है कि क्या बात करते हो, हमने चाहे तो कितना कितना लंबे है, अनुवृत है, महावृत है, फिर वृत है, उपवास है, बारह तप है, धर्म है, क्यों कितना कितना लंबा थोड़ा काम है, और तुमने खत्म इतना ने खत्म कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये सारे जितने भी वृत तप हैं आपके, उनमें यदि सर्वोत्कृष्ट किसी एक का चुनाव करना है तो वो कौन है? सोचो तो 12 तपों में सबसे बढ़िया तप कौन है, सारे चारित्र में सबसे बढ़िया तारक अच कौन है? तो ध्यान है ना। ध्यान है, क्यों है ध्यान? कि ध्यान अंतर मुहूर्त तक करे आत्मा का तो केवल ज्ञान होता है, गारंटी है ना। भरत चक्रवर्ती को हुआ था ना, ये कोई शर्त नहीं लगाई कि तुम कितने दिन से तेरा पहले से उपवास है, तूने परिग्रह कितने दिन पहले छोड़ा था, लगाई क्या शर्त? बोलिए। केवल ज्ञान होने के लिए उन्होंने कहा सिर्फ आत्मा में अंतर्मुद लीन रहो, हमारी शर्त ये है, तुम कब तक और पंचेंद्रिय के विषयों में लीन थे, हमें कोई हिसाब किताब नहीं पूछना है। और तुमने एक साल से उपवास किया था तो करो, लेकिन अभी आत्मा में लीन नहीं हुए अंतर्मुहूर्त तक लगातार, तो बस हमारे यहां से छुट्टी। क्यों? देखो बहुत खतरनाक बात कहता हूं, 48 मिनट में आत्मा की लीनता हो तो केवल ज्ञान होता है, और 6 महीने का भी उपवास करे तो कुछ नहीं होता है। घबराना नहीं, ये कोई नकली उपवास की बात नहीं है, ये उन आदिनाथ की बात है कि जिनने दीक्षा लेते ही 6 महीने के उपवास किए थे या नहीं किए थे, और फिर 6 महीने तक आहार नहीं मिला, वो तो जान लो उपवास नहीं था, भोजन करने जाते थे, समझ गए ना। ये वो उपवास तो पक्के थे, वो सच्चे थे, तीर्थंकर के भी गड़बड़ होंगे क्या? पक्के थे, तो उसके बल ज्ञान नहीं हुआ 1000 वर्ष तक, बोलो क्या करें। तो उपवास को केवल ज्ञान होता है कहां से लाए? उपवास पहला तब है और ध्यान अंतिम तब है। क्यों जी? हमको यदि एक उपवास करना है तो कितने दिन लगेंगे? 1 दिन। अरे वाह। और 2 करना हो तो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। तो सीधा हिसाब है, आपके अध्यक्ष महोदय ने कह दिया, फिर आप क्यों डरते हो? ऐसा नहीं है, 1 दिन में नहीं होता एक उपवास। सुनना, अपने चतुर्दशी का उपवास करना है तो तुम 13 त्रयोदशी की रात में खाओगे क्या? क्यों? तो चतुर्दशी रात को खाओगे क्या? तो 2 रात 1 दिन कम से कम हो गया, 24 घंटे में नहीं हुआ भाई साहब, दिन तो 24 घंटे का होता है, तो 36 घंटे हो गए। अच्छा, और आप क्या शाम तक रात तक खाते रहोगे? पहले दिन त्रयोदशी का एकासन 12 बजे खाओ, फिर चतुर्दशी का उपवास, और फिर पूर्णिमा को भगवान की पूजा पाठ करके स्वाध्याय करके फिर 12 बजे खाओ, तो 48 घंटे में 2 दिन में एक उपवास होता है।
2 दिन हो
ठीक है क्या? नहीं, اب تو ٹھیک ہے, دو دن میں ایک ہوا تو دو باس کتنے دن میں ہوں گے, اب تو کوئی دقت نہیں رہی. تو چار دن میں ہوں گے دو باس. وہ تین دن میں ہو جائیں گے, 72 گھنٹے میں ہو جائیں گے. آپ سمجھ گئے نا, ایسے بڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے. تو میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باس 48 گھنٹے کا ہوتا ہے نا, اور 48 منٹ میں کیول گیان ہوتا ہے, اور 48 گھنٹے کے اباس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اور ایسے اباس 6 مہینے کے ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, پرمان ہے نا ہاتھ میں رکھے ہوئے جیسا. اور یہ متھا دشٹی کے اباس کی بات نہیں ہے, اجانی کے اباس کی بات نہیں ہے, سب میں دشٹیوں کے, جانی کے, دھرماتما کے, سچے منی راجوں کے, آج ناتھ کے اباس کی بات ہے. کیوں بھائی, تو ایک سال کا کریں گے تو, 9 مہینے کا کریں گے تو ہو جائے گا نا, 9 مہینے میں تو یار بال بچہ ہو جاتا ہے. باہو بلی ایک برس تک تو کھانا کھایا تھا کیا؟ تو بس کھانے سے ہو کیا تھا نہیں, کیوں ایک برس بعد ہوا, ایک برس تک کیوں نہیں ہوا؟ ارے جب تک وہ 48 منٹ تک آتما میں لگاتار لین نہیں ہوئے تب تک نہیں ہوا, اور جب ہو گیا جب ہو گیا. سب تو اکیلی 48 منٹ کی ہے, اور وہ دھیان کی, آتما کے دھیان کی. تو آتما کے دھیان کی کتنی مہیما ہے دیکھو, اس لیے لکھا بس بردنتے بھن آپ نے رچی سمجھ تو بھلا ہے, اور آپ روپ کو جون پنوں سے سمجھ جان کلا ہے, اور آپ میں روپ میں لین بھئے پھر سمجھ چارتر سوئی. دیکھو کون منی راج بڑے ہیں, جو چکربرتی کی سمپدا چھوڑ کر کے منی راج بنے ہیں, کروڑوں اربوں چھوڑ کر کے منی راج بنے ہیں, بے کہ جن کے گھر میں کل کھانے کو نہیں تھا بھی منی راج بنے ہیں, بے بولو گھبرا شانتی سے سوچنا. ہو سکتے ہیں نا ایک منی راج ایسے کہ جن کے گھر میں کھانے کی ویوستھا ہی نہیں ہو, یہ کروڑ پتی ہوں, ارب پتی ہوں. ابھی تمہاری احمد آباد میں کوئی دیکھا لی تھی نا, تو بہت بہت کروڑ پتی ارب پتی تھے, تو کروڑوں روپیہ تو انہوں نے دیکھا کے ٹائم پہ ہی خرچ کیا. تو کون بڑے مارا ہے بولو؟ تو وہ گرو جی جو ان کے مان لو ایسے ہوں جو سادھارن گھر کے ہوں, تو وہ جو مہاراج نئے بنے ہیں ان کے, وہ چلے رہیں گے کہ گرو کے گرو ہو جائیں گے؟
گرو کے گرو رہیں گے.
ہم کو مہیما آدھی اتنا ادھک چھوڑا, کتنا چھوڑا. ارے ان کے پاس تو کوئی سائز نہیں, ان نے کیا چھوڑا؟ کیوں اپن بول بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں کیا؟ نائی مری اور سمپتی ناسی اور مورے مڑا بھئے سنیاسی. تلسی داس جی نے لگا عورت مر گئی اور سمپتی ناش ہو گیا, اب کچھ بتایا تھا ہی نہیں, صرف گھٹایا اور سادھو ہو گیا. ایسے دیکھو سادھو کی قیمت اس نے کتنا چھوڑا اس سے نہیں ہے, اس کے برتمان میں آتما کو جانتا ہے کہ نہیں, آتما کا گیان کتنا ہے کہ نہیں, آتما کا دھیان کرتا ہے کہ نہیں, اس کی قیمت برتمان میں سمت گیان چارتر سے ہے, اس نے کتنا چھوڑا اس سے نہیں ہے. اب خیال نہیں ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ارے جو ہے اس کی بات کرو نا, کیا 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 چھوڑا تھا, کیا کھاؤ کیا نہیں چھوڑا تھا. وہ تو الٹی بات ہو گئی کہ جس نے ابھی تک دیکھا لی اس کے پہلے دن تک اتنا پریگرہ تھا اور اتنے پاپ میں ڈوبا تھا, تو پاپ اور جو پہلے سے ہی تیاگی تھا, بولیے انوت لیے تھے, مہاوت لیے تھے, چھوڑ دیے تھے, تو بولو مہان کون ہے؟ ارے مہانتا تو برتمان میں اس کے گیان کے اور دھیان سے ہے. تپسوی کو گیانی دھیانی کہتے ہیں, گیان دھیان تپو رکھتا, جو گیان اور دھیان میں لینو وہ تپسوی ہے. اس تپسیا کا ماپ, تپسوی کا ماپ تپسیا سے ہونا چاہیے. وہ پہلے جتنا پیسہ تھا اس کے چھوڑنے سے, کیوں ایسا کیوں قدر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں پیسہ کی مہیما بس رہی ہے, سمجھے نا, اس لیے ہم کو وہ پیسے والا منی بلا وہ پیسہ چھوڑ کے وہ بڑا لگتا ہے. پنڈت بھی ایسا ہی لگتا ہے, گھبرانا نہیں. کہ پنڈت جی کیا ہے, 5,000 روپئے مہینہ کی نوکری کرتے ہیں. اچھا 5,000 روپئے مہینہ کی نوکری کرتے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جی ارے یہ تو صاحب کروڑ پتی, ارے کروڑ پتی ہے تو اچھا پنڈت ہوگا, کہ گارنٹی, گارنٹی سے اچھا نہیں ہوگا, یہ گارنٹی ہے, گھبرانا نہیں. کیوں तो करोड़ों कमाने में लगा है, उसे क्या फुर्सत है? कि वो जो ज्ञान विद्वत्ता जिसके लिए चाहिए, किसी करोड़पति पंडितों ने कोई किताब शास्त्र लिखे हो तो बताओ, धंधा पानी करता रहेगा। लेकिन हम क्या करें, हमको पंडित भी करोड़पति चाहिए, हमको मुनिराज भी करोड़पति चाहिए, घबराना नहीं। भाई मुनिराज महान माने जाते हैं कि जो एक भाषण में करोड़ों की वर्षा करा सके, और जिन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रखे हों करोड़ों के अरबों के, क्यों है? सारे पहाड़ों को श्रृंगार करने की जिन्हें ड्यूटी ले ली हो, नए पहाड़ एक एक पहाड़ी एक एक महाराजों के अपने कब्जे में ले ली है, दिगंबरों में भी ऐसे घबराना नहीं है। तो वे सब जगह काले होते हैं। देखो साधु तो वो महान है कि जिसके पास कुछ नहीं हो, और ग्रस्त के पास कोणी ना हो तो कोणी का, और साधु के पास कोणी हो तो कोणी का। उसकी महिमा तो त्याग से है ना। तो इसलिए इस गाथा में ये कहा है जो आपने सब्जेक्ट रखा है कि भैया तुम जगत के विषयों में क्यों रमते हो, एक भगवान आत्मा में ही में तुम रमण करो, उसमें ही तुम तृप्त हो जाओ, उसमें ही तुम संतुष्ट हो जाओ, बस यही धर्म है, इससे अलावा जगत में कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। क्यों? उसमें तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा धर्म है, और कोई छोटे धर्म भी होते होंगे शांतिलाल जी, क्यों? वो हमें जरा छोटा धर्म बताओ ना। तो ये कह रहे एकमात्र यही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। आपने इतना बढ़िया सब्जेक्ट रखा है कि तेरा भगवान आत्मा तेरे पास है, उसे तू जान, उसे तू मान, उसमें अपना पर कर, उसमें लीन हो जा, इससे बड़ा धर्म इस जगत में कोई दूसरा नहीं है।